आप सुन रहे हैं नवभारत गोल्ड। नई दौलत का रास्ता है क्रिप्टो या फिर पहेली। जिन युवाओं के पास विरासत में मिली दौलत नहीं है या नेटवर्क नहीं है, उन्हें एक जरिया मिला है पुराने दौलतमंदों से आगे निकलने का। स्वामीनाथन एस अंकलेसरिया अय्यर। बचत का पैसा लोग जमीन या शेयरों में लगाते रहे हैं, इसी पुरानी लीक पर चलना जरूरी है। क्यों न दूसरे तरीके आजमाएं, मसलन बिटकॉइन या नॉन फंजिबल टोकन में निवेश करें। शुरू में जिन लोगों ने इनमें पैसा लगाया उनमें से कई आज करोड़पति हैं। लोग ऐसी दलीलें देते हैं, लेकिन मैं तो आम लोगों को ऐसे डिजिटल एसेट से दूर ही रहने को कहता हूं। एक तो इनका भाव अभी बहुत ज्यादा है, वहीं दाम घटकर जीरो हो जाने का रिस्क भी बहुत अधिक है। बिटकॉइन तैयार करने में बिजली बहुत खर्च होती है, ऐसे में इनके साथ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का मसला भी है। लेकिन अमीर लोगों का अलग ही मामला है, वे अपनी दौलत अलग अलग एसेट्स में लगाते हैं। थोड़ा पैसा इन नई डिजिटल स्कीमों में लगाना उनके लिए फायदेमंद दांव हो भी सकता है। जैसे अपने यहाँ रिजर्व बैंक है, उसी तरह के सेंट्रल बैंक सभी देशों में हैं। इन बैंकों ने ग्लोबल इकोनॉमी में लाखों करोड़ों डॉलर लगाए हैं। ऐसे में जिन निवेशकों के पास कैश सरप्लस की हालत है, वे लीक से हटकर दूसरे एसेट्स में पैसा लगा रहे हैं। इनके साथ जोखिम ज्यादा है तो फायदा भी वैसा ही हो सकता है। किसी भी चीज की कीमत वही होती है जो लोग उसके लिए चुकाते हैं। इसमें ट्रू वैल्यू जैसे किसी अमूर्त किस्म के आइडिया का कोई मतलब नहीं होता। लियोनार्डो दा विंची की एक पेंटिंग हाल में 45 करोड़ डॉलर में बिकी। डर था कि कहीं वो नकली ना हो, फिर भी रिकॉर्ड कीमत लगी उसकी। उस पेंटिंग की हूबहू नकल क्यों बेकार मान लिया जाए, जबकि उसमें ठीक वही सौंदर्य है। इसकी वजह यह है कि अमीर लोग दाम चुकाते हैं खास होने के एहसास का, इस बात का कि जो वे खरीद रहे हैं वो ओरिजिनल है। खास होने का, दुर्लभ होने का जो ये पहलू है, यही तो कलाकृतियां जुटाने वालों को फायदा दिलाता है। बिटकॉइन को 2009 में लॉन्च किया था संतोषी नाकामोतो ने। ये संतोषी नाकामोतो किसी एक शख्स का नाम है या फिर कई लोगों का, ये किसी को पता नहीं। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी है। इसे किसी देश के सेंट्रल बैंक ने जारी नहीं किया। हजारों दूसरी क्रिप्टो करेंसी बनाई जा रही है, इनमें इथेरियम, डोजकॉइन, कार्डेनगो और पोलकाडॉट शामिल हैं। कहने को तो किसी चीज के लिए पेमेंट करना हो तो कैश, क्रेडिट कार्ड या चेक की जगह इन क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह आम लेन देन में जो चार्ज बैंक से लेते हैं वो भी नहीं देना होगा। लेकिन हकीकत ये है कि क्रिप्टो करेंसी का भाव रोज बरोज बहुत तेजी और बड़े अंतर के साथ बदलता है। ऐसे में ये करेंसी के बजाय जुए जैसा मामला लगने लगता है। कहने वाले कहते हैं कि आप क्रिप्टो करेंसी से खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेकिन जरा अपने घरेलू सहायक या पड़ोस के दुकानदार से पूछ कर देखिए, वे तो इसमें पेमेंट नहीं लेंगे। बिटकॉइन में बड़ा लेन देन करते हैं ड्रग्स के धंधेबाज और पैसे का बड़ा गोलमाल करने वाले लोग, क्योंकि इसमें पहचान का खुलासा नहीं होता, सब कुछ एनक्रिप्टेड है। ये एक अहम पहलू है जिसके चलते कई देशों ने क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगा रखा है या उनमें लेन देन का दायरा सीमित किया है। इंटरनेट के दीवानों का कहना है कि आगे बिटकॉइन और ब्लॉकचेन का ही जमाना है, और ये भी कि रुपए पैसे के जो परंपरागत तरीके हैं उन्हें तो मरते हुए डायनासोर समझिए। उनका कहना है कि क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम पर काम करती है, इनमें कोई व्यक्ति या संस्था छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इनकी अपनी एक व्यवस्था है कि कितना अमाउंट जारी किया जा सकता है, लिहाजा इन्फ्लेशन का असर नहीं पड़ने वाला। कुछ आदर्शवादियों का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी में सेंट्रल बैंकों और सरकारों का बेजा कंट्रोल नहीं रहता, इस तरह आजादी और इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है। जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो इसके चलते लोकतांत्रिक बनता है, इससे निवेशकों को निवेश के लिए एक नए तरह का एसेट भी मिलेगा। लेकिन बिटकॉइन जैसे जो क्रिप्टो करेंसी है वह प्रूफ ऑफ वर्क करेंसी है, इनमें लेन देन की वैधता को माइनर कंफर्म करते हैं। ये माइनर तमाम जटिल समीकरण सॉल्व करने की होड़ में रहते हैं। माइनर कोई शख्स भी हो सकता है या कुछ लोगों का समूह भी। ये बहुत अधिक क्षमता वाले कंप्यूटरों से काम करते हैं। विजेता को कुछ बिटकॉइन इनाम में मिलते हैं। इस प्रूफ ऑफ वर्क माइनिंग में बहुत ज्यादा बिजली खर्च होती है। दुनिया भर में इस तरह की जो माइनिंग होती है उसका करीब 80% कामकाज चीन में होता है। अनुमान है कि चीन में कुल बिजली का 5% हिस्सा ऐसी माइनिंग में खर्च हो सकता है। लिहाजा चीन ने बिटकॉइन और ऐसी दूसरी करेंसी पर एक्शन लिया है, इससे इनके भविष्य पर सवाल लग गया। लेकिन कार्डेनो और पोलकाडॉट सरीखी दूसरी क्रिप्टो करेंसी में प्रूफ ऑफ स्टेक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, इसमें काफी कम बिजली खर्च होती है। बिटकॉइन का भट्टा बैठ जाने पर भी इनका वजूद बचा रह सकता है। सरकारों को प्राइवेट करेंसी का आइडिया रास नहीं आता जिन पर उनका कंट्रोल ना हो। हो सकता है कि वे ऐसी क्रिप्टो करेंसी को अवैध घोषित कर दें या इनमें लेन देन को इतना महंगा कर दें कि लोग आज ही जाकर इनसे किनारा कर लें। क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वालों के लिए ये एक रिस्क है। नॉन फंजिबल टोकन यानी एनएफटी का मामला काफी अलग है। गाना, लेख या ड्राइंग से लेकर जो कुछ भी डिजिटल है ये उसके ऑथेंटिक होने के सर्टिफिकेट जैसा है। दूसरे इसकी नकल कर सकते हैं लेकिन असल मालिक के पास ही ओरिजिनल टोकन रहेगा। अधिकतर एनएफटी कलाकृतियों के लिए होते हैं। अमेरिका के आर्टिस्ट बीपल ने कई पेंटिंग्स का एक कोलाज बनाया। उसका एनएफटी हाल में 69 अरब 30 करोड़ डॉलर में बिका। खरीदार थे तमिलनाडु के युवा डिजिटल उद्यमी विग्नेश सुंदरेशन। विग्नेश का कहना है कि एनएफटी उनकी कुल संपत्ति के 10वें हिस्से से भी कम है। इसका मतलब है कि वो अरबपति होंगे। वे दिन गए जब विरासत में मिली दौलत ताकत या रसूख के जरिए धीरे धीरे कारोबारी साम्राज्य खड़े किए जाते थे। आजकल तो आप डिजिटल तरीके से सुंदरेशन की तरह 32 साल की उम्र में अरबपति बन सकते हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने एनएफटी में नई तरह की दौलत की राह बना दी है। आप इसे संपत्ति के मामले में लोकतंत्र कह सकते हैं। जिन युवाओं के पास विरासत में मिली दौलत नहीं है या नेटवर्क नहीं है, उन्हें इसमें एक जरिया मिला है पुराने दौलतमंदों से आगे निकलने का। वे नए आइडिया और कॉन्सेप्ट पेश कर रहे हैं, उनकी खरीद फरोख्त कर रहे हैं। आप इसे एक और बड़ी पोंजी स्कीम कह सकते हैं जिसे फिलहाल कोई भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा। समय ही बताएगा कि ये माजरा है क्या।
इस तरह के और दिलचस्प पॉडकास्ट सुनने के लिए विश्व की सर्वश्रेष्ठ हिंदी इंफरटेनमेंट सर्विस नवभारत गोल्ड पर लॉगिन कीजिए। गोल्ड के पॉडकास्ट का खजाना मिलेगा नवभारत गोल्ड.com पर।